परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। लेकिन इससे पहले कि आज के अध्ययन में हम सम्मिलित हों, आइए मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित और कुशल हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो अपने समय को देकर के प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होते और सुनते और सीखते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो नए नियम की छठवीं पुस्तक है जिसे पौलुस प्रेरित ने लिखा है। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर था और जब वह मृतकों में से जी उठा तब यह सच्चाई सिद्ध भी हो गई। अब क्योंकि मसीह यीशु मृतकों में से फिर जी उठा, आपको एक दिन उसके समक्ष अवश्य खड़ा होना पड़ सकता है, अर्थात खड़ा होना अवश्य है। यदि आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं तो आप अनंत काल के लिए दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, इन्हीं विषयों के साथ हमने अपने अध्ययन को समाप्त किया था। मित्रों, आइए आप मेरे साथ नए नियम की पुस्तक रोमियो की पत्री एक अध्याय उसके 5 पद को निकाल लीजिए। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री एक अध्याय उसका 5 पद लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। ध्यान दीजिए, अनुग्रह और प्रेरिताई। मित्रों, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के उद्धार की विधि है। यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता तो हम कभी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि प्रेरिताई विशेष करके पौलुस और अन्य प्रेरितों के लिए काम में लिया गया है, परंतु प्रत्येक विश्वासी बुलाया हुआ है। यह यूनानी शब्द अपोस्तोले से आया है, जिसका अर्थ है किसी को एक संदेश के साथ भेजना। अतः प्रत्येक विश्वासी को गवाह होना है, संदेशवाहक दूत होना है। इन दिनों में आप परमेश्वर के वचन के फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं, अर्थात इस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बैठे हैं? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं? क्या आप लोगों को बता रहे हैं? या उनका काम है जिन्होंने अनुग्रह और प्रेरिताई पाई है, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। क्योंकि जो उद्धार का आनंद आपको मिला है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि उस आनंद को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि वे दंड ना पाए परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। मित्रों, यह पत्री आज्ञा मानने से आरंभ होकर आज्ञा न मानने से समाप्त होती है। अंतिम अध्याय 16 के पद 19 में पौलुस कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। और पद 26 में वह कहता है, सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। मेरे मित्रों, विश्वास से आज्ञा मानना परमेश्वर के समक्ष एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करता है, कर्मों के द्वारा नहीं। परंतु हमारा उद्धार करने के बाद वह कर्मों के बारे में हमसे बात करना चाहता है, अर्थात हमारा आज्ञा पालन का काम। मित्रों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हम अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। जी हाँ, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख में मैले चित्रों के समान है। तो हम किस प्रकार से अच्छे कर्म कर सकते हैं? लेकिन बात यहाँ पर है कि हम उद्धार पाने के द्वारा अच्छे काम कर सकते हैं। जी हाँ, पहले मैं अच्छा काम नहीं करता था, लेकिन अब मैं अच्छा काम करता हूँ। पहले मैं क्रोधित होता था, पहले मैं झूठ बोलता था, पहले मैं झगड़ा करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, परंतु उद्धार पाने के द्वारा अच्छे कर्मों को कर सकते हैं। मित्रों, मैं अनेक जनों को यीशु में विश्वास लाने की चर्चा करते हुए सुनता हूँ, परंतु विश्वास लाने के बाद वे शैतान के सदृश जीवन जीने लगते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं। मेरे मित्रों, उद्धारक विश्वास आपको मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देता है, न कि अनाज्ञाकारी। क्या विश्वास में कोई अंतर है? निश्चय ही है। अंतर हमारे विश्वास के कर्ता में है। उदाहरण के रूप में देखें, मैं गांधी जी में विश्वास करता हूं। मैं उन्हें एक महापुरुष मानता हूं। वह हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। अब मैं मसीह यीशु में भी विश्वास करता हूं। गांधी जी में विश्वास करने से मेरे उद्धार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और मेरे जीवन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, परंतु मसीह यीशु में जो मेरा विश्वास है वह सर्वथा भिन्न है। जी हाँ, उद्धारक विश्वास हमें उस स्थान पर लाता है जहाँ हम परमेश्वर के पुत्र के लिए समर्पण कर देते हैं, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उचित शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, परंतु उसके साथ एक अनुशासन और कर्म है। आप इन दोनों के बिना पृथ्वी के नमक नहीं हो सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नमक दो तत्वों से बना है, और यदि आप इनमें से एक को भी अलग करके खा लें तो वह विष है, तथापि एक होकर वे एक महत्वपूर्ण लवण बन जाते हैं। विश्वास और कर्म एक साथ जाते हैं मेरे मित्रों, कि हम पृथ्वी के नमक बन जाएं। विश्वास करना और आज्ञा मानना मेरे मन की कामना है। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम रोमियो के पत्र 1:6 को पढ़ें। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, बुलाए हुए वे हैं जो चुने हुए हैं। ये बुलाए हुए कौन हैं? ये वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है योहन्ना रचित सुसमाचार 10:27 में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जी हाँ, वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यदि आप किसी और के पीछे चल रहे हैं या किसी अन्य बात का अनुसरण कर रहे हैं तो आपने मसीह का शब्द नहीं सुना है। आप उसकी भेड़ों में से नहीं हैं। वे जो उसकी वाणी सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं वे बुलाए हुए हैं। यहाँ हम चुनाव के विचार पर विवाद न करें। सीधी सी बात है, वह बुलाता है और आप उत्तर देते हैं। यदि आपने उसकी बुलाहट का उत्तर दिया तो आप चुने हुए में से हैं। लिखा है मसीह यीशु के बुलाए हुए। मेरे प्रियो, पौलुस रोम के विश्वासियों को विश्वास दिलाता है कि वे सब बुलाए हुओं में से हैं। अब इस पत्री की प्रस्तावना के अवांतर शब्द समूह का यहां अंत होता है। इस अवांतर शब्द समूह में डॉक्टर जेम्स स्टिफलर 4 मुख्य बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पौलुस का संदेश धर्मशास्त्र के अनुकूल है। यह संदेश पुनर्जीवित मसीह का है और यह संदेश विश्वव्यापी है और विश्वास के आज्ञा पालन का है। अब पौलुस वास्तविक प्रस्तावना पर आता है जिसे हम रोमियो के पत्री 1:7 में पढ़ते हैं। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर परमेश्वर के प्यारे, क्या यह एक मन भावन बात नहीं है? परमेश्वर रोम के विश्वासियों से प्रेम करता था और जब मैं उसके बारे में सुनता हूँ, वहाँ पर हड़ताल चल रही थी और वहाँ किसी से प्रेम करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वहाँ अपना सामान लेकर स्वयं को वहाँ से भागना और आना और जाना पड़ता था। मित्रों, वहाँ के लोग बहुत कठिनाई में थे। वहाँ सेवा के लिए कोई भी नहीं होता था। टैक्सी के लिए भी लोग इधर उधर भटक रहे थे। परंतु परमेश्वर प्रेम करता है और यह बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। एक जाति, एक देश, एक रंग, एक भाषा नहीं, परंतु सबसे करता है। पवित्र होने के लिए वह हमें बुलाता है, इसलिए वचन में लिखा है कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, अर्थात बुलाए गए पवित्र जन। मूल लेखों में के लिए शब्द नहीं है। बुलाए गए जन जो प्रत्येक विश्वासी का पदनाम है। मेरे प्रियो, पवित्र जन वह नहीं जिसे प्रतिष्ठित किया गया हो। पवित्र जन तो वह है जो मसीह यीशु का नाम ऊंचा करता है। मनुष्य पवित्र जन तब होता है जब मसीह यीशु उसका उद्धारक होता है, अर्थात उसका उद्धार करता होता है। संसार में मनुष्यों के दो ही वर्ग हैं, पवित्र जन और अपवित्र जन। यदि आप अपवित्र जन नहीं हैं, तो आप पवित्र जन हैं। यदि आप पवित्र जन हैं, तो आप अपवित्र जन नहीं हैं। तो आपने मसीह में विश्वास किया है, आपका चरित्र आपको पवित्र जन नहीं बनाता है। मसीह में आपका विश्वास और उसके लिए आपका पृथक किया जाना आपको पवित्र जन बनाता है। मेरे प्रियो, पौलुस ने आरंभ ही में कहा कि वह मसीह यीशु का बंधुआ दास है। इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस को किसी ने गुलाम बना लिया या वह दास बन गया, लेकिन वह कहता है कि वह प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, वह उसका दास है। जी हाँ, अनुग्रह और शांति, ये वाक्यांश पौलुस की सब पत्रियों में औपचारिक प्रस्तावना है। उस युग में अन्य जातियों के अभिवादन का शब्द था खारिस अर्थात अनुग्रह, और यहूदियों का अभिवादन शब्द था शालोम अर्थात शांति। पौलुस ने दोनों शब्दों को संयोजित कर दिया था। हम आगे देखते हैं पौलुस का उद्देश्य। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मित्रों, संपूर्ण साम्राज्य में समाचार फैल गया था कि रोम में बहुत जन मसीह के विश्वास में आ रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रोम का राजा भी परेशान हो गया और शीघ्र ही आगे चलकर विश्वासियों को सताने लगा और सताया जाना आरंभ हो गया। पौलुस यहाँ व्यक्त कर रहा है कि उनके विश्वास की चर्चा संपूर्ण साम्राज्य में हो रही थी। मेरे मित्रों, मैं आपके सम्मुख आपकी कलीसिया के बारे में सोचता हूँ, क्या किसी ने कभी आपकी गवाही सुनी है? आज उसका मूल्य क्या है? क्या आपने कभी अपने कलीसिया में अपने जीवन की गवाही दी है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? क्या आप मसीह यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या सिर्फ उसके बारे में जानते हैं? मित्रों, उसके बारे में जानना और उसे जानना, इसमें अंतर है। मेरे मित्रों, आरंभ में रोम की कलीसिया की गवाही कैसी अद्भुत थी। हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही वह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। ध्यान दीजिए, उसके पुत्र के सुसमाचार, पहले पद में पौलुस ने इसे परमेश्वर का सुसमाचार कहा, आगे चलकर वह उसे अपना सुसमाचार कहेगा, तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। मेरे मित्रों, पौलुस की प्रार्थना सूची बहुत लंबी थी। जब मैं बाइबल विद्यालय में पढ़ रहा था, तब मैंने अपने सहकर्मियों अपने मित्रों से गृह कार्य लिया और दिया करता था। जब जब पौलुस ने किसी के बारे में प्रार्थना की, उसकी वे सूची बनाए। अधिकांश विद्यार्थी पौलुस की प्रार्थना सूची से प्रभावित हुए कि वह कितनी लंबी थी। यहाँ वह कहता है कि वह लगातार रोमी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता रहता था। आज प्रश्न यह है कि कलीसिया में कितने लोग प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपके घर में प्रार्थनाएं होती हैं? यही महत्वपूर्ण बात है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। पौलुस एक सफल यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह रोम पहुंच जाए। प्रेरितों की काम की पुस्तक में उसकी यात्रा के बारे में पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी यह यात्रा सफल नहीं हुई थी। वह बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था और समुद्री तूफान के कारण उनका जहाज टूट गया था। किसी प्रकार वे भूमि पर पहुंचे तो वहां सर्प ने उसे डस लिया, तथापि वह यात्रा सफल हुई। मेरे मित्रों, उसने कहा था कि परमेश्वर की इच्छा में ही वह रोम आना चाहता था, और मैं यह मानता हूं कि उसका रोम जाना परमेश्वर की इच्छा में ही था, क्योंकि वह अपनी इच्छा से वहां तक शायद नहीं पहुंच पाता। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर के वचन के प्रचार हेतु रोम को जाना चाहता था। पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार करके अति प्रसन्न होता था। यह काम उसके मन को भाता था। जब कोई प्रचारक परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करना चाहता है, तब वह एक व्यवस्थापक बन जाता है, एक प्रायोजक बन जाता है, वह वचन का सेवक नहीं रह जाता है। मेरे मित्रों, मैं ऐसे अनेक मनुष्यों को जानता हूँ। एक प्रचारक ने मुझसे कहा, मुझे वचन का प्रचार करना अब अच्छा नहीं लगता है। मैंने उससे कहा, उचित होगा कि आप सेवकाई को त्याग दें। यदि आप वचन का प्रचार करना नहीं चाहते हैं तो आपका सेवा में रहने का कोई भी काम नहीं है, आपको इसमें रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर अपने लोगों को चुन लेगा। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। दूसरे शब्दों में पौलुस उनसे कुछ कहेगा और वे पौलुस से कुछ कहेंगे, वे वचन के द्वारा परस्पर आशीष पाएंगे। मित्रों, अधिक समय नहीं हुआ है कि मुझे अलग अलग जगहों पर 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों की सभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आरंभ में तो उनके साथ कठोरता से पेश आया, तब मैंने देखा कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी उत्तम थी, तो मेरी आंखें एक नए संसार के लिए खुल गई। मैंने उस सभा से प्रस्थान के समय प्रभु की स्तुति की, प्रभु मुझे वह अवसर मिला कि मैं वहां पर उनके बीच में सेवा दे सका। जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, वे मेरी सेवा कर रहे थे, तो यहाँ पौलुस यही कहना चाहता है, आदान प्रदान। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मेरे प्रियो, यद्यपि वह उनके पास जाना चाहता था, उसके मार्ग में उत्पन्न बाधाएं उसे रोक रही थी। उनमें से बहुत से विश्वासी विभिन्न स्थानों में उसके द्वारा विश्वास में आए थे। यहां पर फल से उसका अभिप्राय आत्माएं जीतने से नहीं वरन विश्वासियों में आत्मा के फल से है, जैसा उसने गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में कहा है, जहां पर हम पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, पौलुस यहाँ पर इस बात को बताता है कि आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे मसीही जीवन में ये फल दिखाई नहीं देते हैं, परंतु पौलुस रोमियो की कलीसिया में इन फलों को देखना चाहता था और उसने देखा भी। आज प्रश्न यह है कि क्या मेरे जीवन में ये फल पाए जाते हैं? कई बार जब हम कलीसियाओं में सेवा के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में प्रेम नाम का कोई भी चीज नहीं पाया जाता है। वहां पर लोग एक दूसरे के विरोध में हैं, परिवार में आनंद नहीं है, आपस में मेल नहीं है, धीरज की तो बात ही नहीं, कृपा और भलाई की कोई बात नहीं, यहां तक कि विश्वास में भी समझौता है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इन सारी बातों को जांचने और परखने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह बताना चाहता है कि हम कलीसिया में प्रेम के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना के लिए आते हैं, विश्वास में बढ़ने के लिए आते हैं, न कि हम एक दूसरे के लिए विरोध के लिए आते हैं। पौलुस इन बातों को कहता है कि आत्मा का फल अर्थात जो विश्वासी हैं उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा के फल पाए जाने चाहिए, दिखने चाहिए, ताकि हर एक विश्वासी अपने इस गवाही को दूसरों के बीच में कह सके। मेरे मित्रों, आज आपने कितने लोगों के बीच में अपने जीवन की गवाही दी है? जब लोग आपको देखते हैं तो क्या वे कह सकते हैं कि ये भाई बहुत प्रेमी, दयालु और नम्र व्यक्ति है? क्या वे कह सकते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे मसीही हैं, इसमें मसीह का आचरण है? यदि ऐसा नहीं तो आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। हमारे दफ्तर में, स्कूल में, हमारे कार्यस्थल पर, बाजार में, कलीसिया में, जहां कहीं भी हम पाए जाते हैं, हम मसीह के लिए एक गवाह हैं, क्योंकि पौलुस हमसे यही कहता है कि हम में परमेश्वर का आत्मा है। जी हाँ, आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं, उससे कहें कि प्रभु, मैं आपके उन आत्माओं के फलों को पाना चाहता हूँ, अपने जीवन में उद्धार के आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, मैं अपने कलीसिया में जागृति देखना चाहता हूँ। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करें और आज के इस अध्ययन के प्रकाशन में अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीषों से भर दे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसमें हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमसे फिर से एक बार बातचीत किया है और हमें आपने स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं, हमारे पापों की क्षमा हम अपने से नहीं पा सकते, परंतु आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, आप पर विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, इन आत्माओं के फलों को हमारे जीवन में दे दीजिए। हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों के हरेक अपराधों को आप क्षमा करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, विशेष करके उन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उन्हें नया जीवन दे, उद्धार का आनंद दे, ताकि वे भी कलीसिया में खड़े होकर आपकी गवाही दे सके, ये कहने पाए कि आप उनके उद्धार करता है, आप उनसे प्रेम करते हैं, आपने उन्हें छुटकारा दिया है, आपने उन्हें शांति और आनंद दिया है, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य और जीवन है, आप जीवित परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर देते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हम सबके उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, है वो उसके गुण गाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर, है वो उसके गुण गाऊंगा। अपनी पर्वत की ओर।